नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे शुक्लंबर ब्रह्मचारी और अन्य भक्तों के बारे में, और जो संदेश या उपदेश हमें इन कथाओं से मिल सकता है वो ये है कि भगवान केवल हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जो भी कुछ हम अर्पण करते हैं भगवान को, यदि वो भक्ति से युक्त न हो तो भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं, और यदि हमारी भेंट बहुत छोटी भी क्यों न हो परंतु यदि वो भक्ति से भरी हुई हो तो भगवान उसे स्वीकार करना पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के बारे में बताया जाता है कि छोटी सी छोटी सेवा, छोटी सी छोटी भेंट यदि भक्ति से अर्पण की जाए तो भगवान उस सेवा को या उस भेंट को बहुत भारी या बहुत बड़ा मानते हैं। दूसरी ओर बड़ी से बड़ी सेवा, बहुत बड़ा भेंट कोई भगवान को यदि अर्पण करता है परंतु उसमें भक्ति नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, उसे बहुत छोटा समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या चीज़ भगवान को अर्पण कर रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम किस भाव से महत्व हम अर्पण कर रहे हैं, ये है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी एक बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के। वो नवद्वीप में रहा करते थे चैतन्य महाप्रभु के समय। वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। उनका एक छोटा सा घर था, घर तो क्या, घर भी नहीं कह सकते, कुटिया भी नहीं कह सकते, खैर रहने के लिए कोई स्थान था और उसमें वो रहते। वो कुटिया गंगा जी के तट पर थी और रोज नवद्वीप शहर में शुक्लांबर ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए चले जाते, जो भी कुछ चावल आदि उनको मिल जाता, फिर उसको भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण करके उसे वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। तो क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त थे, वो भगवान कृष्ण के कृपा से, उनके प्रसाद से सदैव संतुष्ट रहते थे और उनको अपने दारिद्र्य का एहसास हुआ भी नहीं। उनको ये कभी लगा नहीं कि मैं गरीब हूँ। ये होती है भक्त की पहचान। जो दुनिया की चीज़ों के प्रति लालसा नहीं करता, जो लोभी नहीं होता है, जो संतुष्ट होता है, समझ लेता है कि जो भी मेरे पास है वो भगवान की कृपा से है, तो भगवान चाहते हैं कि मैं इससे संतुष्ट रहूं, तो अपने प्रारब्ध से संघर्ष न करके, भगवान को दोष न देके, दुखी न होके, संतुष्टि की भावना में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना समय और अपनी शक्ति लगाता है। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ऐसे ही व्यक्ति थे और जहाँ भी जाते कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते करते जाते, चौबीसों घंटे वो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते। जिसके घर में जाते वो ये नहीं कहते कि भिक्षा दीजिए, कृष्ण कृष्ण कहते तो सब समझ जाते कि भिक्षा के लिए आए हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन करा रहे थे भक्तों के द्वारा, तो लंबी कतार बनी थी क्योंकि धोना था मंदिर को, तो अनेक मटकों से कुंड से जल लाया गया और एक भक्त मटके को पकड़ता, कलश को पकड़ता, दूसरे भक्त को देता, या कोई कोई झाड़ू उठा के किसी दूसरे को देता, तो ऐसे एक दूसरे से संपर्क करते हुए वो अरे तुरे नहीं करते, वो हरी हरी कहते या कृष्ण कृष्ण कहते। तो इस तरह से वो हर समय कृष्ण का नाम लेते रहते थे भक्त। हम लोग भी यहाँ प्रसाद बांटते समय हरे कृष्ण कहते हैं। दूसरे एक मठ में हम गए थे एक बार वृंदावन में, तो वहाँ वो लोग राम का नाम लेते हैं, तो जब भी आते हैं कोई लेके दाल राम चावल राम रोटी राम ऐसा करके आते हैं, ताकि हर चीज़ के पीछे हम राम या कृष्ण का नाम श्रवण करें, कीर्तन करें। जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, केवल भोजन नहीं ले रहे हैं। भोजन और भजन में बहुत गहरा संबंध है ना, केवल एक मात्रा का अंतर नहीं है, बहुत गहरा संबंध है। भोजन ठीक से होगा, सही भावना से होगा, तो भजन होगा ठीक से। भोजन ठीक से नहीं होगा तो भजन कैसे होगा। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भोजन शब्द का अर्थ ये भी है कि इंद्रियों को तृप्त करना, ये भी भोजन शब्द का अर्थ है। साधारणतः हम ये सोचते हैं कि भोजन का मतलब केवल इतना है कि हम कुछ खाएं। हाँ, खाने के पदार्थ को भोजन तो कहते हैं अवश्य, परंतु इसके साथ साथ इंद्रियों को तृप्त करना, इसे भी भोजन कहते हैं। तो भोजन और भजन दोनों में संबंध है। यदि हम भोजन को नियंत्रित नहीं करेंगे, भोजन को ठीक से नहीं करेंगे, तो फिर भजन हमारा नहीं हो पाएगा। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी इतने शुद्ध कृष्ण भक्त थे कि कृष्ण नाम के बिना कभी भी रह नहीं सकते थे और सभी लोग उनको जानते थे। उनको उनका घर नहीं था ठीक से, कपड़े ठीक से नहीं थे, फिर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। ऐसे महान भक्तों के जीवनी से हम सब प्रेरणा पा सकते हैं। हमारे जीवन में कोई कमियां हो जाती हैं किसी चीज़ का अभाव हो जाता है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। परंतु शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्रीधर खुलावेचा आदि ऐसे भक्तों का स्मरण हमें करना चाहिए। तो ऐसे करते करते अपना जीवन बिताया करते थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी। वैसे भगवान उनसे इतने प्रसन्न थे कि एक महत्वपूर्ण घटना उनके घर में हुई। आपको पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के लीलाओं को प्रकट करने के पहले वो विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे शाम को। लेकिन उनका परिवर्तन तब हुआ जबकि वो गया में गए और निमित्त ये था कि अपने पिता के श्राद्ध को करने गए थे। वहाँ पे ईश्वर पुरीपाद से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ उनके जीवन में कि वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्रेमावेश में वहाँ से चले आए, बल्कि वृंदावन की ओर निकलने वाले थे। लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि नहीं, अभी और बहुत कुछ काम है आपको, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है। तो फिर वो गया लौट के चले, नवद्वीप लौट के चले आए। और उस समय वो कृष्ण कृष्ण कह के आ रहे थे, भाव विभोर थे कृष्ण प्रेम में और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में दिखाई पड़ रहे थे। वो रोते रोते कृष्ण कृष्ण कहते, कहाँ हैं कृष्ण, कहाँ हैं कृष्ण। नवद्वीप के सारे वैष्णव बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे कहाँ वो निमाई जो हमें पकड़ पकड़ के हमारे साथ में वाद करता था, तर्क करता था व्याकरण के बारे में, और ये निमाई जो कृष्ण कृष्ण कह के कहाँ है कृष्ण कह रहा है और उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है और उसका शरीर कांप रहा है कृष्ण प्रेम में। ये दो निमाएं तो बिल्कुल अलग है, ये कैसे परिवर्तन हो गया निमाई का। तो जब निमाएं आए पहले तो श्रीमान पंडित जैसे भक्त उनके पास आए, उन्होंने देखा कि क्या हो गया। तो निमाई पंडित ने उनसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा मेरी हृदय की वेदना क्या है। क्या थी वेदना? कि वो कृष्ण को नहीं पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखलाया है कि कैसे दूर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, विप्रलंब सेवा। ऐसा नहीं कि हमें केवल हर समय भगवान का दर्शन होना चाहिए। भगवान का दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि भगवान की सेवा होती है। तो उन्होंने कहा श्रीमान पंडित से कि सारे भक्तों को बुलाओ, गदाधर, श्रीवास इत्यादि, कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सभी लोग आइए और मेरे हृदय की वेदना मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति की लीला को प्रकट की तो वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। सारे भक्त वहाँ इकट्ठे हुए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय की बात बताई कि मैं क्या करूं, मैं कृष्ण को नहीं पा रहा हूं, कृष्ण के बिना मैं तो नहीं रह सकता, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। और हर एक भक्त से पूछते, मुझे बताओ कहाँ है कृष्ण। सारे भक्त इतने प्रसन्न हुए कि उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। भक्तों का यही आनंद होता है ना, जब वो देखते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भक्त लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो जैसे हम कल या परसों चर्चा कर रहे थे कि भक्तों का आनंद जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में होता है। हालांकि कोई व्यक्ति का भक्त बनना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। लाखों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद या जन्मों के बाद विरला ही कोई एक जीव श्री कृष्ण के शरण में आता है, तो ये महत्वपूर्ण घटना तो है ही। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को खुश होने के लिए कोई बड़ी भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो जब वो देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रुचि ले रहा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, यही उसके जीवन का आनंद है। तो भक्तों ने देखा कि निमाय पंडित न केवल वैष्णव हो गए हैं लेकिन ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव हुए हैं जिसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए सभी, और ऐसे लक्षण उन्होंने कहीं नहीं देखे थे। तो सोचने लगे कि वास्तव में ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचार्य के घर से ही ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने और किसी का घर चुना नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर थे नवद्वीप में जो वैष्णवों के भी घर थे, लेकिन उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के टूटे फूटे घर को चुन लिया। वहाँ पर गए और आगे चल के थोड़े वर्षों बाद जब महाप्रभु को संन्यास लेने की इच्छा हुई तो संन्यास लेने का जो संकेत है या जो उसकी जो खबर है वो उन्होंने दी पहली बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, जैसे हम पहले कह रहे थे, वो भिक्षा मांगकर चावल ले आते। एक बार वो निमाय पंडित के सामने चले आए, दोनों मिले तो निमाय पंडित ने देखा, अरे शुक्लांबर कहाँ से आए तुम, भिक्षा मांग के आए? अच्छा, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के कंधे में एक झोली हुआ करती थी जिस झोले में वो अपने भिक्षा से लाए हुए चावल को रखते थे। कच्चा चावल हुआ करता था, हर एक घर में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा कच्चा चावल उनको दे देता था। ऐसे अनेक परिवारों की अज्ञात सुकृति हो गई। एक भक्त की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है, जो भक्त नहीं है उसको भी बहुत लाभ मिलता है। तो ऐसे बताया जाता है कि इसलिए जो साधु लोग हैं, जो महात्मा है, वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। इसलिए नहीं कि वो जगह जगह जाके स्वादिष्ट व्यंजनों को चखें, परंतु इसलिए कि सारे भक्त गृहस्थों को, जो भक्त नहीं हैं, उनको सेवा करने का एक अवसर मिल जाए। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी भिक्षा लेके आए थे तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हारे झोले में क्या है दिखाओ। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी तो देने के लिए तैयार नहीं हुए, और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि याद आ रहा है कि जिस तरह द्वारका में श्री कृष्ण ने सुदामा या श्रीदामा के पोहे छीन लिए, उसी प्रकार अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के कच्चे चावल को छीन लिया। सुदामा का एक और नाम श्रीदामा भी है, हालांकि श्रीदामा एक सखा भी है वृंदावन में श्री कृष्ण के, वो अलग श्रीदामा है। ये श्रीदामा का दूसरा नाम सुदामा है, लेकिन सुदामा नाम से वो प्रसिद्ध है। वैसे तो आप तो जानते हैं सुदामा की कथा। सुदामा ने सोचा कि श्री कृष्ण को ऐसा कुत्सित अन्न हम कैसे दे सकते हैं, ये तो इनके लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो श्री कृष्ण को अर्पण किया जाए। श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश हैं, लक्ष्मीपति हैं, और इनको हम क्या ऐसा साधारण भोजन देंगे। तो अपने पत्नी के कहने पर वो थोड़ा कुछ ले आए थे, लेकिन भगवान ने चाहा कि मुझे तो वो चाहिए, तुम क्या क्या छुपाया है तुमने सुदामा। सुदामा ने पीठ के पीछे उस पोहे को रख दिया, लेकिन भगवान तो बड़े शक्तिमान हैं, उनसे ज़्यादा शक्ति किनकी हो सकती है। और बेचारा सुदामा विप्र तो इतने भूखे प्यासे थे, केवल हड्डियां थी उनके शरीर में, क्योंकि वो कुछ खाते ही नहीं थे, इतने गरीब थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे वो पोहे छीन लिए और फिर एक मुट्ठी खाई मुंह में, और जैसे खाई तो कहने लगे, वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया है सुदामा। और सुदामा सोच रहे थे कि अरे क्या मुसीबत है, कि कैसे विकट परिस्थिति आ गई, कि विडंबना है बड़े कि यहाँ मुझसे ऐसा अन्न इन्होंने छीन लिया, अब खाए जा रहे हैं। दूसरी मुट्ठी भर के जब वो खाने वाले थे तो रुक्मिणी देवी ने स्वतः अपने हाथ रख के भगवान के हाथ पर उनको रोका कि और नहीं ऐसे खाना, ये आपके लिए अन्न नहीं है। आपने एक मुट्ठी भर खा ली इस ब्राह्मण के पोहे को, तो मेरे पास जो भी कुछ है मैं देने के लिए बाध्य हो गई हूँ इस ब्राह्मण को। और यदि आप लोगे सुदामा विप्र से, तो मेरे पास देने के लिए उनको कुछ रहेगा नहीं। तो लक्ष्मी देवी कह रही हैं कि मैं भी गरीब हो जाऊंगी। लक्ष्मी देवी के पास उस समस्त धन है, लेकिन एक मुट्ठी पोहा खाकर लक्ष्मी देवी कह रही हैं कि मैंने सब कुछ सुदामा को दिया है, देना पड़ा मुझे बाध्य होकर। खुशी से दिया, लेकिन प्रेम से बाध्य होकर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने छीन के ले लिया शुक्लांबर ब्रह्मचारी का अन्न। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी सोच रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं दे सकते। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती छीन लिया और कच्चा चावल खाने लगे। कच्चा चावल कोई नहीं खाता है ना, परंतु चैतन्य महाप्रभु खाने लगे। और सभी लोग देख रहे थे कि भगवान की कैसी कृपा है शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर। परंतु जिस तरह रुक्मिणी देवी ने रोका था कृष्ण को, यहाँ किसी को कृष्ण ने को चैतन्य महाप्रभु को नहीं रोका। और वो खा गए कच्चा चावल, चबाते चबाते बड़ा आनंद आया उनको। कहने लगा कि वाह, मैं बहुत संतुष्ट हूँ शुक्लांबर। इस तरह से शुक्लांबर ब्रह्मचार्य के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा कर दी। और फिर महाप्रभु ने कहा, मैं इतना संतुष्ट हूँ तुम्हारे ऊपर हे शुक्लांबर, कि मैं तुम्हें अब एक भेंट देना चाहता हूँ, प्रेम भक्ति का भेंट। और सारे भक्तों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया कि ऐसी कृपा शुक्लांबर ब्रह्मचारी को मिली है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि वो प्रेमा भक्ति का भेंट उनको देंगे। तो ऐसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर महाप्रभु की कृपा रही। फिर महाप्रभु कहने लगे कि शुक्लांबर, तुम्हें जानना चाहिए कि जहां भी तुम चलते हो मैं चलता हूं, जहां भी तुम भिक्षा मांगते हो मैं भिक्षा मांगता हूं, जो भी तुम खाते हो वो मैं खाता हूं, तुम मुझसे अभिन्न हो। ऐसे शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचार्य की प्रशंसा करने लगे। तो वृंदावन दास ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों ही बताते हैं कि ये भगवान के गुण होते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान को भोग चढ़ाने की कई विधियां होती हैं। आप में से जो पुजारी सेवा करते हैं, आप तो भलीभांति जानते हैं कि कितने सारे नियम होते हैं भगवान को नैवेद्य दिखाने के लिए। केवल अनेक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है और स्वच्छता का विचार होता है, मुद्राएं और करनी पड़ती हैं भोग के ऊपर, बहुत कुछ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत समय लग जाता है इसमें। और शास्त्र में बताया जाता है कि जब तक ऐसे विधियों का पालन नहीं होता तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु यहाँ देखिए क्या हुआ सुदामा के बारे में, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के बारे में। इन्होंने तो अर्पण ही नहीं किया भगवान को, लेकिन भगवान ने सामने से आके खींच लिया, जबरदस्ती उस चीज को ले लिया। क्यों? क्योंकि उस चावल में भक्ति थी। वैसे देखा जाए तो अर्पण नहीं किया था शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने, परंतु उनका हृदय, उनका प्राण, उनका सब कुछ भगवान के लिए समर्पित था। इसलिए उनके पास जो भी कुछ था वो भक्ति से भरा हुआ था। तो भगवान उनके इसी नियम को तोड़ देते हैं। कौन से नियम? कि हमें भोग चढ़ाते समय मंत्रों का आदि उच्चारण करना चाहिए, बहुत स्वच्छता आदि का नियम पालन करना चाहिए। इन सारे नियमों को स्वयं भगवान ने तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि समस्त नियमों का और विधियों का, निषेधों का सार है भक्ति। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान नियम आदि का विचार इतना नहीं करते हैं। स्मर्तव्यः सततम् विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः। वैसे भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलना, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सदैव करना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वैदिक शास्त्रों के। और अन्य जितने भी नियम हैं वो इन दो नियमों के किंकर या दास हैं। दूसरे शब्दों में जितने भी नियम बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, उनका उद्देश्य है कि अंततः हम भगवान श्री कृष्ण का सदैव भक्ति भाव से स्मरण करें। तो जहाँ वो स्मरण होता है भगवान का, फिर इन विधियों का क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य है इनको करने से। अंतर बहिर यदि तपसाततः यदि हरि तपसाततः किम्, नांतर यदि हरि तपसाततः किम्। इसलिए बताया जाता है कि यदि कोई अंदर से और बाहर से भगवान को देखता है तो उसको तपस्या की क्या आवश्यकता, क्योंकि तपस्या का फल ही है, उद्देश्य ही है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना या भगवान को अंदर बाहर सब जगह देखना। और यदि भगवान को कोई अंदर और बाहर नहीं देख रहा है फिर भी उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता, क्योंकि जब तक उसके पास भक्ति नहीं है तपस्या करने से क्या लाभ मिलेगा। तो इस तरह भक्ति ही हर चीज का सार है। तो जहां भगवान भक्ति देखते हैं वो विधियों के बारे में इतनी परवाह नहीं करते। हाँ, जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमें अवश्य विधियों का और निषेधों का पालन सख्ती से करना चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हमसे हो जाएगा जो हमारी भक्ति में बाधक हो जाएगा। तो हमें विधियों का निषेधों का पालन करना चाहिए, परंतु शुक्लंबर ब्रह्मचारी जैसे शुद्ध भक्त, उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि स्वयं भगवान ने सामने से आके नियमों को तोड़ दिया और उन्होंने सबसे ऊंचा नियम स्थापित किया। वो सबसे ऊंचा नियम है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये सबसे ऊंचा नियम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन घटनाओं से ऐसे अनेक चीजें सिखाई हैं। एक बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में प्रसाद लेने के लिए आऊंगा। तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी बोलने लगे, मेरे घर में प्रसाद के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो सोच रहे थे मेरा घर क्या है, घर ही नहीं है, छोटी सी कुटिया कुछ है, कुछ खंबे हैं, कुछ क्या है, मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा भगवान की, और साथ साथ में मेरे पास है क्या उनको अर्पण करने के लिए, थोड़ा कुछ चावल आता है, थोड़ा बहुत चावल में उबाल के उसको ले लेता हूँ, बस वही मैं खा लेता हूँ, इनको क्या अर्पण करूँ मैं। और एक विचार भी ये था शुक्लांबर ब्रह्मचारी के मन में कि क्योंकि एक भिक्षुक जगह जगह जाता है और जगह जगह से भिक्षा स्वीकार करता है, किसी स्थान में कुछ अशुद्ध हो सकता है, कहीं शुद्ध हो सकता है, तो क्योंकि माधुकरी या भिक्षा मांगते मांगते व्यक्ति अनेक स्थानों में जाता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता है कि जो भी कुछ उसे मिलता है वो शुद्ध ही है। तो इसलिए भिक्षुक के अन्न को लोग स्वीकारते नहीं है क्योंकि वो दूषित माना जाता है, क्योंकि कहाँ से अन्न आया है पता नहीं है। तो जो सभ्य व्यक्ति हुआ करते थे वैदिक सभ्यता के अनुसार, वो लोग भिक्षुक का अन्न नहीं ग्रहण करते थे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के मन में ये विचार था कि मैं कैसे इस अन्न को महाप्रभु को अर्पण करूं। तो महाप्रभु ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं अवश्य आऊंगा। और वो चले गए। उधर शुक्लांबर ब्रह्मचार्य डर गए, अन्य भक्तों के पास गए कि मैं क्या करूं, महाप्रभु कह रहे हैं कि वो मेरे घर में आएंगे प्रसाद के लिए। तो सारे भक्त उनके हृदय की बात जान गए कि वो किस लिए वो डर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिंता नहीं करना, जब भगवान स्वयं आ रहे हैं तुम्हारे घर में तो इससे और क्या अच्छी बात हो सकती है, वही कर देंगे सब कुछ, ठीक है। वैसे तुम इतना ही डर रहे हो कि तुम्हारा अन्न आदि सब दूषित है, तो तुम स्पर्श नहीं करना अन्न का। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कहा, ठीक है। तो महाप्रभु के आने का समय हुआ, दोपहर मध्यान्ह के समय। उधर शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने थोड़े चावल ली और पानी में डाल दिया, उबालने लगे। उधर थोड़े बहुत केले के फल आदि भी वो तैयार कर रहे थे, लेकिन छुआ नहीं जहाँ तक हो सके। और फिर बड़े आनंद से जोर जोर से वो कीर्तन करने लगे, जय कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, भाव भोर होकर नृत्य करने लगे। उनके शुद्ध नामों को सुनकर स्वयं लक्ष्मी देवी वहाँ जल्दी जल्दी चली आई उनके कमरे में। केवल लक्ष्मी देवी के दृष्टिपात से वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बन गया, पक गया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने तो ठीक पकाने के लिए भी नहीं रखा था, स्पर्श भी नहीं किया था, लेकिन लक्ष्मी देवी के स्पर्श से, उनकी कृपा दृष्टि से बहुत ही स्वादिष्ट बन गया। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, अरे शुक्लांबर मैं आ गया, कुछ खिलाओगे कि नहीं? ठीक है। तो उन्होंने चावल वगैरह लिया, ऐसा सुगंध था इसका, उन्होंने भगवान को अर्पण किया, विष्णु को। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु को अर्पण किया और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। और जब वो ग्रहण कर रहे थे तो ऐसे प्रशंसा कर रहे थे उस प्रसाद का कि मानो उनके पांच मुख हैं। अरे ऐसे प्रसाद का सेवन मैंने कभी नहीं किया है, ये तो अमृत है, साक्षात अमृत है ये, शायद ये तो स्वयं लक्ष्मी देवी ने ही बनाया होगा। तो इस तरह शुक्लांबर ब्रह्मचारी का जीवन धन्य हो गया। वैसे उनको बड़ा शर्म, बहुत शर्म आ रहा था कि मेरे घर में आके ऐसा अन्न वो ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। उनका ये भी चावल के टुकड़े, ये कण हैं, दाने हैं, वो भी सब टूटे टूटे फूटे हैं। कोई अच्छी बासमती चावल तो नहीं थी जो वो खिला रहे थे। तो इस प्रकार महाप्रभु की कृपा शुक्लांबर ब्रह्मचारी की के ऊपर हुई। तो जहाँ भक्ति है, यदि भक्त भगवान को कोई चीज़ अर्पण नहीं भी करता, भगवान आके उसके पास से छीन ले लेते हैं, ये सिद्धांत है। और जहाँ भक्ति नहीं है, कोई अर्पण करना भी चाहे तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम तो आप सब ने अवश्य सुना है, षड गोस्वामियों में से एक थे, बहुत अमीर घर के थे। उनके पिता बहुत बड़े जमींदार थे उड़ीसा में, लेकिन अपने घर को छोड़कर वो भाग गए चैतन्य महाप्रभु का संग स्वीकार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया। स्वरूप दामोदर उनका मार्गदर्शन करते रहे। अंततः स्वरूप दामोदर के साथ रहने से उनका नाम पड़ा स्वरूपेर रघुनाथ। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे धनी परिवार से आए, फिर भी उनका वैराग्य अपूर्व और अतुलनीय था। ऐसा वैराग्य जिसकी नकल कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कम से कम। सबसे पहले जब वो जगन्नाथपुरी में आए तो 5 दिन उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि सबको बांटा जाता है, भंडारा होता है। तो 5 दिन पहले तो उन्होंने ऐसे स्वीकार किया। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि वैरागी को ऐसे करना ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ दुकानों से थोड़ा कुछ जो मिलता था वो स्वीकार करना शुरू किया। फिर सोचा कि ये भी ठीक नहीं है, फिर भिक्षा मांगने लगे खड़े होकर। जो भी आता था थोड़ा कुछ हाथ में दे देता था, वो स्वीकार कर लेते थे। फिर वो भी करना उन्होंने बंद किया, क्योंकि सोचने लगे कि मेरी बुद्धि दूषित हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति जाते हैं, मेरे मन में ये विचार आ सकता है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ देगा कि नहीं देगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु का, रघुनाथ दास गोस्वामी के विचार, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। फिर कैसे क्या खाते? जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वो पहले तो यूं ही बांटा जाता है, लेकिन बाकी जो बच जाता है बहुत पकाया जाता है भगवान को और भोग चढ़ाया जाता है। देखिए साधारण तौर से क्या होता है कि जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है तो एक थाली में रखा जाता है भोग, सही है ना? जैसे अभी यहाँ कितने भक्तों के लिए प्रसाद तैयार है, लेकिन भगवान को कितना भोग चढ़ाया जाता है? केवल एक थाली में जितना एक व्यक्ति के लिए चाहिए उतना ही चढ़ाया जाता है। और जब वो महाप्रसाद हो जाता है तो बाकी का जो तैयार है वो भी प्रसाद मान लिया जाता है। परंतु जगन्नाथपुरी में ऐसे नहीं होता। जगन्नाथपुरी में जो भी पकाया जाता है वो रखा जाता है। तो महाप्रसाद की कोई कमी नहीं होती है। वहाँ के रसोई घर में आप में से कोई भक्त गए हैं? रसोई घर देखा है आपने जगन्नाथपुरी में? अंदर बड़ा अद्भुत है वहाँ का रसोई घर। तो खैर उसका वर्णन करने के लिए तो अभी समय नहीं है। परंतु जो बच जाता है फिर वो बाहर के दुकानदार जो है वो बेचते हैं, और फिर दुकानदारों के पास भी बेचने के बाद जो थोड़ा प्रसाद रह जाता है, जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए जो सड़ गया होता है, उसको वो लोग फेंक देते हैं। एक कोने में एक जगह है मंदिर के बाहर, और वहाँ पे गाय वगैरह आके उसको खा लेते हैं। और वहाँ पे ऐसे भी महाप्रसाद पड़ा हुआ होता था जो गाय भी नहीं स्वीकार करते थे, इतना सड़ा हुआ होता था वो। वैसे महाप्रसाद तो महाप्रसाद है। महाप्रसाद कभी दूषित नहीं होता है, कभी सड़ नहीं जाता है, ये भौतिक बुद्धि है। फिर भी क्योंकि लोग स्वीकार नहीं करते थे इसलिए वो गायों के लिए रखा जाता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर जाते रात को जब कोई नहीं था देखने के लिए, और थोड़ा सा वो सड़ा हुआ महाप्रसाद, तथा कथित सड़ा हुआ महाप्रसाद ले लेते, चावल, बाहर का चावल भी सड़ गया था, उसको नीचे अंदर का जो कठिन भाग होता है बीच का उसको ले लेते, पानी में धो के फिर उसको खा लेते। ये उनका दैनिक भोजन था। एक बार स्वरूप दामोदर आए कि अरे रघुनाथ तुम क्या खा रहे हो? हमने बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें खा रहे हो, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तुम खा रहे हो, हमें भी तो खिलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने भी सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खा रहे हैं, तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए, रघुनाथ क्या खा रहे हो? रघुनाथ, नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या खा रहे हो? तो रघुनाथ दास तो बड़े नम्र थे, बताना नहीं चाहते थे कि किस तरह का भोजन मैं खा रहा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने छीन लिया, केवल अकेले अमृत का पान करोगे, बांट के नहीं खाओगे क्या? किस तरह के भक्त हो तुम, सब अकेले ही करना चाहते हो? तो उनसे छीन लिया, एक मुट्ठी मुंह में डाल दी, और वाह वाह ऐसा अमृत मैंने कहीं भी चखा नहीं है रघुनाथ, तुम वास्तव में जीवन का बहुत आनंद ले रहे हो। और दूसरी बार लेना चाह रहे थे, लेकिन इस बार स्वरूप दामोदर ने उनके कर कमल पकड़ लिए कि नहीं प्रभु, ऐसा एक बार करने आपके लिए काफी है। जिस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने द्वारका में श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया था, उसी प्रकार यहाँ स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ लिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बुलाया नहीं था कि आइए ये महाप्रसाद स्वीकार कीजिए। परंतु वो आए क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य और उनके भक्ति से आकर्षित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये सारी बातें हैं। भक्ति ये बहुत सूक्ष्म चीज है। और एक भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम था हिरण्य, हिरण्य मजुमदार, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। और वो जगन्नाथ मिश्र के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब अपनी बाल लीला कर रहे थे तो वो जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी प्राय थे, तो दोनों परिवारों का बहुत अच्छा संबंध था। तो एक बार जब निमाय पंडित अपनी बाल लीला कर रहे थे, महाप्रभु का जन्म मात्र हुआ था। अब ऐसे एक चीज थी कि जब बच्चा रोता था, बालक निमाय रोते थे, तो सारे पड़ोस की महिलाएं आती थीं और हरी बोल कहते, तो बच्चा या बालक निमाय रोना बंद कर देता। इस प्रकार से बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके मुख से भगवान का नाम निकलवाया। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि निमाय रोते जा रहे थे, और जितना भी कोई हरि बोल कहे, कृष्ण कृष्ण कहे, ये रोना बंद ही नहीं करे, तो क्या किया जाए? सभी लोग हैरान हो गए। और जगन्नाथ मिश्र भी आए, कहा क्या निमाय, बात क्या है, क्यों नहीं रो रहे हो, रोना बंद कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर निमाय कहने लगा कि आज एकादशी है और वहाँ जगदीश पंडित के घर में चावल भगवान विष्णु को भोग चढ़ाया जा रहा है, तो वो चावल मैं खाना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए, थोड़े दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस बच्चे को ये कैसे पता चला कि आज एकादशी है? एकादशी क्या है, क्या नहीं है, इसको क्या मालूम, लेकिन आज कैसे कह रहा है कि एकादशी है? दूसरी बात, इसे कैसे पता चला कि जगदीश पंडित के घर में भगवान विष्णु को चावल का भोग चढ़ाया जा रहा है? और तीसरी बात, भोग चढ़ाया जा भी रहा है तो इस बच्चे को एकादशी के दिन में हम चावल कैसे खिला सकते हैं? तो ऐसे जगन्नाथ मिश्र सोचते सोचते गए जगदीश पंडित के घर में और बताया कि ये समस्या है, अब क्या किया जाए। तो जगदीश पंडित बहुत आनंदित हो गए, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, एकादशी है पर कोई बात नहीं, खिलाओ खिलाओ, ये बच्चा साक्षात हरि है। और फिर जगदीश पंडित ने वो भोजन दे दिया, क्योंकि निमाय जगदीश पंडित का भोग स्वीकार करना चाहते थे। हालांकि जगदीश पंडित ने निमाय को नहीं अर्पण किया था। वो जैसा आप जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को तो चावल आदि खिलाया जाता है, एकादशी हमारे लिए होता है, भगवान के लिए नहीं। भगवान तपस्या नहीं करते हैं, हमें तपस्या करनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों से सब कुछ छीन लेते हैं, भले भक्त उन्हें अर्पण करे या न करे। तो ये इतने सारे उदाहरण हैं हमने दिए, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के, सुदामा विप्र के, और अब जगदीश पंडित के, और ऐसे कई और उदाहरण हैं। शबरी के बारे में आप तो सुना है, आपने सुना ही है कैसे बेचबा चबा के वो उसका स्वाद लेकर वो दे रही थी और वो खाते गए श्री रामचंद्र बड़े आनंद से। विदुर के घर में भी गए थे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में, दुर्योधन का भोग नहीं स्वीकार किया, विदुर के घर में जाके रूखा शाक स्वीकार किया, विदुर के यहाँ जाके भिक्षा मांगी भगवान श्री कृष्ण ने, मैं विदुर के यहाँ जाऊँगा जहाँ भक्ति है। तो हमारे जीवन में यही सार है, कैसे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हृदय में जागृत किया जाए। जब हृदय में प्रेम होगा तो हमारे पास जो भी कुछ है उसमें भक्ति आ जाएगी। जो भी हम करेंगे वो कार्य भक्तिमय रहेंगे, परंतु हमारे हृदय में भक्ति नहीं है तो फिर भगवान उस भेंट को उतनी आतुरता से स्वीकार नहीं करेंगे। तो शुक्लांबर आदि भक्तों के द्वारा भगवान हम सबको ये सारी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज थोड़ा प्रश्नों के लिए हम समय छोड़ रहे हैं। हाँ, ये कल के प्रश्न भी इतने सारे अच्छा, पहले पुराने प्रश्नों को थोड़ा ले लेते हैं फिर। ये कल रात, कल शाम के, कल सुबह के प्रवचन की बात है शायद। कहते हैं कि जिनके साथ हमारा गहरा संबंध नहीं है उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आसान है, परंतु जिनके साथ गहरा संबंध है उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना, जैसे पति पत्नी, माता पिता का बच्चे और भाई बहन, ऐसे संबंधों में गहरा जो अच्छा व्यवहार है वो करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए। यदि हम ये देख लें कि ये कुटुंब श्री कृष्ण का है, मेरा नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, ये सब श्री कृष्ण की संपत्ति है, और मैं पति पत्नी माता पिता बच्चा जो भी है इसकी भूमिका मैं निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ, तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो अवश्य संबंध ठीक रहेंगे। हमें जान लेना चाहिए कि हम वैष्णवों के साथ अभी संबंध रख रहे हैं। ये केवल हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता नहीं है, ये कृष्ण भक्त हैं। ऐसा ध्यान में रख के हमें संबंध बनाए रखने चाहिए। आपने बताया कि भगवान की भक्ति करना बहुत सरल भी है और बहुत मुश्किल भी, तो मेरा सवाल यह है कि भगवान की भक्ति को कैसे सरल बनाएं? भक्ति सरल है, हम सरल नहीं है। समस्या भक्ति में नहीं है, समस्या हम में है। तो हम सरल बन जाएंगे तो भक्ति सरल हो जाएगी, हम सरल नहीं बनेंगे तो भक्ति सरल नहीं रहेगी। अब वही बात है, इसे इतने सारे प्रश्न हैं अच्छा, एक एक करके आप भी पूछते जाइए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत लंबा में रुकना पड़ेगा। हाँ, किसी का प्रश्न था ना यहाँ पे? हाँ, कुछ इसलिए तो हम भोजन लेने के पहले महाप्रसादे गोविंदे और शरीर अविद्या जाल ऐसे सब प्रार्थना हम कहते हैं ना, ताकि हम कहीं भूल ना जाएं कि हम जो ग्रहण करने जा रहे हैं वो साधारण भोजन नहीं है, वो श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो याद दिलाने की आवश्यकता रहती है। हालांकि इन चीज़ों को हम जानते हैं लेकिन बार बार सुनना आवश्यक होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार प्राय हर एक प्रवचन में ये बताया करते थे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। कई बार भक्त सोचते थे हमें पता है हम शरीर नहीं है, प्रभुपाद जी बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, जानते हुए भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए बार बार श्रवण करना आवश्यक है। जैसे हमारा श्रवण होगा वैसे हमारा स्मरण होगा, हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। इसलिए यदि हम सही भाव को बनाए रखना चाहते हैं प्रसाद के बारे में तो श्रवण ठीक होना है। श्रवण ठीक होने से हमारी चेतना ठीक रहेगी, चेतना ठीक रहने से प्रसाद के प्रति भाव भी ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे जीवन में कुछ भी हम करें वो यांत्रिक हो सकता है, कुछ भी हम करें। इसलिए तो आज के प्रवचन का सार यही था कि हृदय से हमें करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पथ में आया हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। केवल ये एक यांत्रिक चीज नहीं बननी चाहिए। अर्पण करने के लिए, नाम के लिए हम कर रहे हैं तो बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है कि जब भी हम मैं कोई प्रश्न करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं कोई माता जी प्रभु जी कौन है, तो मेरे वरिष्ठ भक्त मुझसे कहते हैं कि मुझे प्रश्न नहीं करने चाहिए जो मेरे जीवन से संबंधित नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे कोई दर्शन के बारे में, आत्मा प्रकृति आदि के बारे में प्रश्न नहीं करने चाहिए? अवश्य कर सकते हैं, जो भी वरिष्ठ भक्तों ने आपसे कहा होगा इस दृष्टि से नहीं कहा होगा, आपसे इस दृष्टि से कहा होगा कि ऐसे प्रश्न कीजिए जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न है, जब हमारी भक्ति, जब हमारा जप अच्छा होता है तो हमें लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपने आप को बहुत पतित समझते हैं। जैसे वो प्रगति करते हैं वो अपने आप को पतित समझते हैं, और जैसे हमारा जप थोड़ा अच्छा होता है हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो कैसे हम शुद्ध भक्तों की तरह सोच सकते हैं? शुद्ध भक्त होके, शुद्ध भक्त होने के बाद फिर उनकी तरह भी हम भी सोचेंगे। तो इसलिए हमें बस साधन भक्ति करते रहना है और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे यह महाराष्ट्र में बोलते हैं, घाई नहीं करना है, है ना, सब कुछ ठीक आ जाएगा, सही समय पर सब आ जाएगा। हाँ, माइक है वहां। प्रश्न ये है कि सत्वगुण में रहने के लक्षण क्या है? ये भगवद गीता का विषय है ना, सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन भगवद गीता में है ना, तो बस उस प्रकार हमें रहना है। फिर भी सत्वगुण के लक्षण हैं, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना पानी से, वैसे चार पांच प्रकार के स्नान हैं शास्त्र में बताए गए हैं, वायु स्नान है, मंत्र स्नान है। एक दो बार भक्तों ने हमें ऐसे भी जवाब दिया है, वो ऐसे एक बार कोई भक्त आए थे मंगल कह भाई स्नान नहीं किया तुमने, हाँ मंत्र स्नान कर लिया है, पानी से स्नान और फिर शुद्ध आहार, शुद्ध कपड़े मतलब स्वच्छ कपड़े, शुद्ध विचार, सही समय पे सही चीज़, गंदगी में नहीं रहना, सब कुछ साफ सुथरा रखना, अपना कमरा हो, आश्रम हो, घर हो, हमारा परिसर हो, अपना शरीर हो, हमारे कपड़े हो, स्वच्छ रखना, बोलने की पद्धति, रहन सहन, बोल चाल मधुर हो, हमारी वाणी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाए बिना वजह, शुद्ध वाणी हो, आहार शुद्ध हो, जीवन में संयम हो, इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रित करते हुए हम जीवन चलाएं, ये सारे सत्वगुण के लक्षण हैं। यदि हम देखते हैं कि किसी के कमरे में सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, किताबें यहाँ पड़ी हैं, कपड़े वहाँ पड़े हैं और कुछ पता नहीं चलता कहाँ से क्या ढूंढ निकालें कैसे करें, तो ये सात्विक नहीं है। कभी कभी ब्रह्मचारी आश्रमों ऐसे देखा जाता है, घरों में भी देखा जाता है, स्वच्छता रखना ये बहुत आवश्यक है। ये सत्वगुण का अनुशीलन मन में होता है, बाहर से स्वच्छ अंदर से स्वच्छ, और संयम डिसिप्लिन, सही चीज पे सही समय पर सही चीज। जब ऐसे होता है कि हम एक चीज करने का जो समय है उस समय दूसरा चीज करते हैं तो फिर सारा हमारी दिन सारी दिनचर्या वो बिगड़ जाती है। नियमित जीवन ये सात्विक जीवन है, तो ऐसे हम करेंगे तो अवश्य धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी। आध्यात्मिक जीवन के लिए सत्वगुण का अनुशीलन करना अनिवार्य है। जहाँ तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव रहता है वहाँ पे आध्यात्मिक विचार बहुत कम मन में आते हैं। राजसिक और तामसिक व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिक जीवन के प्रति होना बहुत मुश्किल है, इसलिए सत्वगुण का अनुशीलन करना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, माइक वहाँ दे दीजिए, तब तक हम और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ सत्य त्रेता द्वापर कली ये जो चार युग हैं, ये चक्र केवल पृथ्वी लोक पर होता है या स्वर्ग लोक में, नरक लोक में आदि होता है? आपके क्या विचार हैं? कोई उत्तर देंगे? ये तो केवल पृथ्वी लोक के लिए है। जब तक यहाँ एक कलयुग बीत जाता है तो देवताओं के थोड़े दिन बीत चुके होते हैं। ये युग चार युगों की बात है, यहाँ पृथ्वी लोक के लिए है। हाँ जी, माइक चालू कीजिए। जब माइक आप देंगे तो माइक को बंद मत कीजिए। प्रश्न ये है कि हम ऐसे भक्तों से बर्ताव कैसे करें जो भक्ति का दिखावा कर रहे हैं वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे हैं। वैसे हमें क्यों वो विश्लेषण करना चाहिए, हमें क्यों इसके बारे में इतना विचार करना चाहिए? हमें ये देखना है कि हम अच्छे भक्तों का संग करें और जितने अच्छे भक्तों का संग हम करेंगे हमारी भक्ति अच्छी बढ़ती जाएगी। भक्ति का दिखावा करना तो नहीं चाहिए अवश्य, परंतु कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसका निर्णय कौन लेगा, हमें क्यों लेना चाहिए। और दूसरी बात, कम से कम नकल कर तो रहा है ना वो व्यक्ति, कम से तो नकल करते करते वो बन भी जाएगा भक्त। आजकल लोग हर चीज का नकल करते हैं, कोई सिनेमा का अभिनेता होता है वो उसके बाल कैसे वो भी ऐसे कराते हैं, और फिर कपड़े पहनते हैं जैसे सिनेमा का अभिनेता पहनते हैं, और जिस प्रकार से वो उनकी कार्य होते हैं, जीवन शैली होती है बड़े बड़े लोगों के, वैसे जनसाधारण भी पीछे पीछे उनकी नकल करती है। तो कम से कम उन चीज़ों का नकल करने के बजाय यहाँ नकल करें तो धीरे धीरे भक्तों के संग में भगवान की कृपा से प्रसाद ले ले के शुद्ध हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। सही जगह तो आ रहे हैं ना, सही चीज़ का नकल कर रहे हैं, कम से कम कर भी रहे हैं तो गलत चीज़ का तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, माइक जरा यहाँ दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न है कि इधर तो विरह प्रेम में भगवान राधा से राधा लीला किया, लेकिन आध्यात्मिक जब उन्हें भी लक्ष्मी के साथ या राधारानी का साथ या लगनी शक्ति का साथ ऐसे ही विरह प्रेम करते या जैसा प्रेम करते सब कृष्ण ऐसा प्रेम करते।
मैं समझा नहीं, मतलब विरह में
अभी इधर जितना लीला किया राम से लेके कृष्ण से लेके सब विरह प्रेम ही किया ना, गोपी से राधा रानी से सीता से लक्ष्मी से, तो वो जो प्रेम है इधर भक्ति जग में किया, आध्यात्मिक जग में विरह प्रेम करते क्या?
अच्छा अच्छा, प्रश्न है कि विप्रलम्भ सेवा जो है, विरह का प्रेम जो है, वो श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में करते हैं कि केवल यहाँ लीला के लिए करते हैं? तो बहुत गहरा प्रश्न है। वास्तव में वहाँ अधिकतर गोलोक में मिलन की लीला चलती है, यहाँ पे विरह होता है। यहाँ आके भगवान कृष्ण का जन्म उधर मथुरा से होकर गोकुल में फिर वो जाते हैं, दूसरी ओर राधा रानी का जन्म रावल में होता है, और राधा रानी जन्म लेती हैं आंख बंद करके, वो दिखती नहीं है किसी को, और जब श्री कृष्ण आते हैं तो पहली बार राधा रानी आंख खोल लेती हैं, ऐसे लगता है कि दोनों अब पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में तो राधा रानी और श्री कृष्ण सदैव साथ में हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के अयोध्या में राम, श्री रामचंद्र और सीता देवी सदैव साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल में आके लीला होती है। श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है, सीता देवी का जन्म मिथिला में होता है, और जब श्री कृष्ण 16-17 वर्ष के रहते हैं उस समय विश्वामित्र मुनि उनको ले जाते हैं, असुरों का वध करने के बाद मिथिला पहुंच जाते हैं, स्वयंवर होता है, शिव जी का धनुष बाण तोड़ देते हैं, फिर सीता देवी का हाथ जीत लेते हैं, ये सब लीला है। फिर दोनों का विवाह होता है, ये तो सब भगवान की लीला है। आध्यात्मिक जगत में वो सदैव साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके विरह का प्रेम भी वो सिखलाते हैं। एक श्लोक है, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान श्री राम, ये हनुमान जी कहते हैं, भगवान श्री राम केवल रावण का वध करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, रक्षो वध वधायैव न केवलम विभो, किस लिए आए? मर्त्य लोक के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। मर्त्यावतारस्तु इह शिक्षणम, और क्या शिक्षा थी? कि यहाँ कुतोन्नथा स्याद, कि यहाँ से ये दुख जो श्री राम ने अनुभव किया सीता देवी से दूर होकर, वो क्यों होना था? वो तो आत्मा राम है, श्री राम तो भगवान है, हर अवस्था में वो सुखी रहते हैं। फिर ऐसी लीला उन्होंने क्यों की कि सीता देवी से वो दूर हो गए और सीता देवी का अपहरण होने के बाद में वो बहुत शोक करते रहे। इतना शोक कर रहे थे कि लक्ष्मण को उन्होंने समझाना पड़ा कि आप याद रखिए आप कौन हैं। यहाँ के विरह के का भाव स्वीकार कर रहे थे। तो हनुमान जी के कहने का तात्पर्य ये है कि श्री राम इस विरह की लीला से यहाँ संसार के लोगों को सिखाना चाहते हैं कि देखो जितने संसार की आसक्ति होगी उतना दुख बढ़ेगा। पुरुष स्त्री की आसक्ति से दुख मिलेगा, पारिवारिक आसक्ति से, संसार की आसक्ति से, धन के प्रति आसक्ति से दुख मिलेगा। तो वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, और विरह का स्वाद भी वो लेना चाहते हैं, क्योंकि विरह वास्तव में मिलन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्रजवासियों का जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, उसको उसका स्वाद देने के लिए तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ठीक है, भाई यहाँ पे है क्या नहीं, घर क्यों छोड़ना चाहिए, कृष्ण को जोड़ना चाहिए। घर को छोड़ना नहीं, कृष्ण को जोड़ना, परिवार को कृष्ण से जोड़ना चाहिए। जब हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाना चाहिए। ये कोई लापरवाही का जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन है। केवल कृष्ण के लिए ही हम कुछ छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। परंतु एक बार गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने से हमें गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के हैं? प्रश्न ये है कि हमने सुना है कि हमें कई चीजों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आशा रखने से हताशा हो जाती है, तो आशाएं नहीं रखें कैसे? ये सही है, आशा तो रखनी चाहिए। भाव भक्ति का एक लक्षण है आशाबद्ध, कि एक न एक दिन भगवान की कृपा मुझ पर आएगी और मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, अवश्य भगवान की कृपा आएगी, ये आशा तो रखनी ही चाहिए। ये आशा जीवन में नहीं होगी तो भक्ति करेंगे कैसे, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, प्रगति कैसे करेंगे? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, ये श्लोक तो आप सब जानते हैं। तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते करते हमारा जीवन हमें बिताना चाहिए। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा अवश्य एक दिन हमारे ऊपर होगी। समझ में नहीं आया कोई, अब जरा प्रश्न स्पष्ट लिखिएगा, अच्छी लिपि में थोड़ा लिखिए। हम भक्तों के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक कृतज्ञता कैसे जागृत करें? कृतज्ञता का भावना हृदय में लाने से कृतज्ञता आ जाएगी। ज्यादा हमें मानसिक स्तर पर नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई कहता है हम सुबह कैसे जल्दी उठ सकते हैं? उठिए। हम भक्तों के प्रति प्रेम से कैसे रह सकते हैं? प्रेम से रहिए, रह के कर सकते हैं। कई बार बहुत सवाल भी करना आवश्यक नहीं है, बस हमें कृति के स्तर में रहना चाहिए। प्रश्नों का महत्व अपनी जगह में है, लेकिन कई बार हम उसको बहुत जटिल बना देते हैं विषय को। विषय बहुत सरल होते हैं, कृतज्ञ कैसे होना चाहिए, होकर होना चाहिए, है ना। तो भक्ति बहुत सरल है, सरल रहने से सब ठीक रहता है। हाँ, माइक वहां देंगे।
हरे कृष्ण। जब हम लॉर्ड को भोग ऑफर करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ड्यूटीज को जल्दी जाना होता है, भोग प्रिपेयर करने में हमें टाइम लग जाता है, तो जब ऑफरिंग करते हैं तो तुरंत निकाल लेते हैं। तो उससे हम फिर मान लेते हैं कि लॉर्ड ने एक्सेप्ट कर दिया होगा, तो क्या वाकई में इस टाइम में ऐसे टाइम लॉर्ड एक्सेप्ट करते होंगे?
आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है, स्पीड ऑफरिंग, सब कुछ स्पीड में होता है, हाई स्पीड। नहीं, जहां तक हो सके हमें सही तरह से करना चाहिए ऑफरिंग। कम से कम 10 मिनट तो रखना चाहिए भगवान के सामने, 10 मिनट नहीं तो 9 मिनट नहीं तो 8 मिनट कुछ तो रखना चाहिए सामने। हाँ, कई जगह ऐसी प्रथा है कि केवल भगवान को यूं दिखाते हैं और फिर निकाल लेते हैं। कि बड़े बड़े मंदिरों में जगन्नाथ जी के सामने भी बाहर से कोई आता है, बस यूं दिखाते हैं, ले जाते हैं। वृंदावन में भी ऐसे अनेक मंदिरों में प्रथा है, परंतु जो मूल भोग चढ़ता है वो तो सही नियम के अनुसार चलता है। इसलिए हमें समय को ऐसे ठीक करना चाहिए कि भोग सही समय पर आए, रसोई सही समय पर हो, ठीक है। और किसी का प्रश्न है? हाँ, माइक चला दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि कई लड़के हैं, हमारे सहपाठी हैं, हम उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, हम उनको प्रेम की बातें कहते हैं उनसे, लेकिन वो हमसे प्रेम का संबंध नहीं रखना चाहते क्योंकि हम लोग भक्त हैं और वो भक्ति नहीं करना चाहते, यही प्रश्न है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जब कोई हमारे प्रेम के व्यवहार को कोई लौटाता नहीं है, कोई उसका आदान प्रदान नहीं करता है, तो ठीक है, ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकते, तो संबंध ठीक ठाक रखना चाहिए। एक न एक दिन वो तो आएगा हमारे पास, हो सकता है, तो हमें न संबंध को बिगाड़ना चाहिए न ज़बरदस्ती प्रेम देना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तुम्हें मेरा प्रेम, ऐसे नहीं। नॉर्मल जो साधारण व्यवहार है ऐसे करना चाहिए, ठीक है। हाँ, शबरी का उल्लेख तो है, लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना ही कहा गया है कि ये बेर खाए, नाम नहीं है शबरी, लेकिन वो घटना है संक्षेप में। लक्ष्मण रेखा की लीला और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्या वो लीला हुई थी क्या? वैसे अनेक रामायण हैं, यद्यपि वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है, लेकिन अनेक अन्य रामायण भी हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो अधिकृत नहीं मानी जाती हैं और कोई हैं जो अधिकृत माने जाते हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में ही समस्त लीलाएं हैं, हालांकि वो मूल है। थोड़ी ऐसे भी लीलाएं हैं जो अन्य रामायणों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, पीछे माइक दीजिएगा। हमें अर्पण करना चाहिए। उनका प्रश्न है कि जब भगवान केवल भक्ति स्वीकार करते हैं, यदि हमारे हृदय में भक्ति न हो तो हम कैसे अर्पण करें? आप कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहते हो, इसका मतलब है कि कोई भक्ति तो है ना, नहीं तो आप क्यों अर्पण करना चाहते श्री कृष्ण को? तो जो भी हमारे हृदय में है भक्ति, उससे हमें अर्पण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ऊपर वह ऐसी कृपा करें कि उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा देर हो गया है, तो कथा यहाँ समाप्त करते हैं आज सुबह के लिए, और आज शाम को 7 बजे यहाँ फिर से मिल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। गौर प्रेमानंदे।